उससे किसी से पूछे कि चेहरा खूबसूरत कौन सा है तो कोई कहता है कि उसकी पेशानी जो है वो चौड़ी हो ये आदमी बहुत खूबसूरत होता है दूसरे से पूछे तो कहता है पेशानी को छोड़ो चेहरा गोल होना चाहिए ये बड़ा खूबसूरत होता है तीसरे से पूछे तो वो कहता है नाक ठीक होनी चाहिए चौथे से पूछे तो कहता है मुंह ठीक होने चाहिए तो कहते हैं फलासफा कि सारी दुनिया मिल भी जाए तो हुस्न पे मुत्तफिक नहीं होती हर एक का मायार अपना अपना होता है जब लोगों के अपने मायार हैं तो दुनिया में हुस्न पाया ही नहीं जाता दुनिया हुस्न से खाली है ये सिर्फ हमारी और आपके देखने की चीज है कि जिसको जो चीज अच्छी लगे अब ये सूफी फलासफा की बात और जो मुसलमान फलसफी इस तरफ गए कि दुनिया में हुस्न का वजूद नहीं पाया जाता वो जरा से इससे आगे चले गए उन्होंने कहा अगर नहीं पाया जाता तो एक जगह तो हुस्न है दुनिया में नहीं है और आखिरत में यकीनन हुस्न होगा और अल्लाह ताला की जात उससे ज्यादा हुस्न वाला कोई नहीं वो इतनी खूबसूरत जात है कि कयामत में जब इंसान में इतनी ताकत आ जाएगी कि वह ताला शानू को देखे उसकी ज्यारत करे तो फिर इंसान उस हुस्न को देखकर ऐसा मुतहय्यर होगा इतनी ज्यादा अजीब चीज उसके लिए होगी कि लोग सजदे में गिर पड़ेंगे और करोड़ों साल तक वो उस हुस्न में मुब्तला रहेंगे सजदे में पड़े रहेंगे और अल्लाह ही जानता है कि कितने साल गुजर जाएंगे बिला तशबीह उसकी मिसाल आप देखिए कि कभी कभी शायर को देखें उसे कोई शेर बड़ा अच्छा लगता है तो वो बार बार उसे दोहरा के उससे लुत्फ उठाता है अब जिस आदमी को शेर का पता ही नहीं है वो कहेगा इससे पता नहीं क्या हो गया है कि शेर को बार बार पढ़ता है एक आदमी कव्वाली जानता ही नहीं और वो कव्वाल को देखता है और कव्वाल मस्त होता है एक ही मिसरे को बार 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 दोहराता है उसे क्या पता कि कव्वाल पे क्या बीत रही है वो कहता है कि ये सारे ऐसे ही ड्रामे हुआ करते हैं लेकिन वो उसकी दिल की हालत को नहीं जानता ऐसे ही बात चीजें ऐसी खूबसूरत होती हैं कि इंसान हैरान रह जाता है देखते का देखता रह जाता है पहाड़ हैं सब्जा है झरने बह रहे हैं स्विट्जरलैंड की लोग तारीफ करते हैं अपना जगह की तारीफ करते हैं बेख्तियार देख के आदमी कहता है कि सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लाह पाक है अल्लाह की ज़ात हर ऐसे जिसने इतनी रंगारंग चीजें पैदा की हैं और बिना शुबा अल्लाह ही की तख्लीकात हैं तो हर आदमी का मयार मुख्तलिफ हुआ और उसके साथ साथ जो हुस्न है उसमें वो खो जाता है क्लासिकी मौसीकी जो है इसमें सितार पे कभी कभी और चीजों पे वो मिजराब लगाता है और मिजराब लगाने के बाद वो गुम हो जाता है कि वो उसके नशे में डूब जाता है फिर उसे होश आता है फिर एक मिजराब लगाता है फिर कई मिनट तक वो उस नशे में गुम हो जाता है बिल्कुल बिला तशबीह ऐसे ही क़यामत में जब अल्लाह का आला की रोयत होगी और लोग गिर पड़ेंगे सजदे में तो फिर वो सजदा कितना तवील होगा इंसानों का मुसलमानों का अल्लाह के मानने वालों का वो करोड़ों साल उस सजदे में रहेंगे और पता नहीं कितना वक्त बीत जाएगा और उस दिन वो भी सजदा करेंगे जो दुनिया में अल्लाह को नहीं मानते थे कुरान कहता है कि उस दिन जो भी होगा वो सजदे के लिए वो आएगा मगर फर्क कितना हो जाएगा कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता था वो खड़ा रहेगा और फिर गिरेगा तो माथा उसका सीधा जाकर जमीन पर लगेगा और उसकी कमर वो उससे बैठ नहीं आएगा सजदे के लिए कमर झुकानी पड़ती है कमर झुकेगी सजदा हो जाएगा तो अल्लाह कुछ बंदे सजदे में गिर जाएंगे मगर वो हुस्न ऐसा होगा कि जो बाकी हैं वो सजदे की कोशिश तो करेंगे समझ उन्हें भी आ जाएगी कि इदराक कुछ ना कुछ होगा कि क्या चीजें हैं हाँ काफिर अल्लाह की उस उन चीजों से अल्लाह ताला ने फरमाया महरूम रहेगा इन्नम रब्बिन यौम दिल्लमाजुबून काफिर उस चीज से हिजाब और पर्दे में रहेगा तो जो काफिर पर्दे में रहेगा इसका मतलब ये हो गया कि फिर वो मुनाफिकों की किस्म हो गई जो सजदा नहीं कर सकेगी कि काफिर मारूम कर दिए गए मुनाफिक मारूम नहीं हुए लेकिन गिर गए सजदा नहीं कर सके और मोमिन इंसान ने सजदा किया हुस्न को भी यही कहते हैं और इसी तरह मजे को भी वो यही कहते हैं कि दुनिया में मजा है वो कहते हैं किस चीज का मजा बच्चन खाने को तुम कहते हो कि बहुत लजीज है तो खाने का मजा कुछ नहीं है वो कहते हैं आपको जो भूख लग रही थी इतनी شدید और तबीयत पे बोझ पड़ रहा था कि कुछ खाऊं बस इस खाने की वजह से वो तकलीफ दूर हो गई जब तकलीफ दूर हुई तो रूह ने चैन का सांस लिया सुख का सांस लिया कि मुसीबत हटी वो कहते हैं बस इतनी सी बात है तुम लज्जत कहते हो लज्जत असल में नहीं आई असल में तकलीफ को दूर किया वो कहते हैं एक आदमी शराब पीता है माजला कहता है शराब में बड़ी लज्जत है कुछ लज्जत नहीं है वो तो उसे तलब हो रही थी शराब की और उसने उस तलब का दफिया किया और तलब को दफा करने के लिए तलब की वजह से जो बोझ पड़ रहा था तबीयत से कोई काम नहीं कर सकता था वो उठा उसने एक पैक पी लिया अब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो जो तकलीफ थी उसने दूर की है इस वजह से तबीयत अपने हाल पे आई है मजा तो कुछ भी नहीं और जो मुसलमान फलासफा इसके कायल हुए हैं कि मजा दुनिया में पाया ही नहीं जाता वो कहते हैं इसीलिए जब जन्नत में जाएगा तो फिर बगैर किसी जरूरत के खाएगा और पिएगा यहां जरूरत इसलिए पेश आई कि भूख लग गई थी या जरूरत इसलिए पेश आई कि इंसानी जिस्म ने बढ़ना था जरूरत इसलिए पेश आई कि नहीं खाएगा तो मर जाएगा जन्नत में मौत नहीं है जन्नत में ऐसी चीजें नहीं है तो जब बगैर इन चीजों के तलब के वो खाएगा तो उसे फिर पता चलेगा कि लज्जत क्या चीज है क्योंकि वो किसी चीज को दफा नहीं कर रहा रोक नहीं रहा हटा नहीं रहा बल्कि असल चीज का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर अल्लाह ने फरमाया है कि उसमें लज्जत होगी और इसीलिए खुदा इस जगह कुरान करीम में कहते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो शराब पिएंगे और उसमें नशा नहीं होगा और उसमें बकबक भी नहीं होगी यानी दुनिया में जो चीजें थी उनसे वो जगह खाली है उसमें खालिस मजा है सारी चीजों को इसी पे क्यास कर लिया जाए तो शाबिल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देखो इंसान की मुवाफिक जो चीज हो जाती है इंसान उसमें लज्जत को पाता है क्या मुवाफिक हो जाता है नेकी मुवाफिक हो जाती है आदमी नेकी करता है खुश होता है इसलिए उसमें अंदर नेकी का जज्बा है जब वो जज्बा इसकी तस्कीन हो जाती है तो खुश होता है और समझता है कि अल्लाह ताला के हाथ से मुझे ये बड़ी चीज मिल गई और फिर उसके बाद जब वो चीज जिसे मकरूह महसूस होती है उस चीज को चूंकि अपने अंदर के खिलाफ पाता है उससे दुख होता है अब उसकी मुतासिर मिसालें हैं अक्सर एक आदमी नेकी करता है और नेकी करने में वो देखता है कि अल्लाह ने इस नेकी का हुक्म दिया है और तबीयत में भी रात आ जाती है वो नेकी खुश होता है काम वो कर गुजरता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया और उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझे बताएं मेरी नेकी किसके साथ हो तो आपने बोला अपनी वालिदा के साथ नेकी करो अच्छा सलूक करो उन्होंने फिर पूछा अल्लाह के रसूल किसके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां के साथ फिर उससे पूछा आपने बोला तुम्हारी वालिदा सबसे ज्यादा हक रखती हैं कि तुम उनके साथ नेकी करो उसने कहा अल्लाह के रसूल और बाप चौथी मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप का हुक्म दिया तीन मर्तबा मां का फरमाया और चौथी मर्तबा बाप का हुक्म दिया इसलिए फुकहा ने तफरीक की है बाप और मां के हुकूक में और वो कहते हैं कि ताजीम और इज्जत बाप की ज्यादा है और खिदमत मां की ज्यादा है शरीयत ये बताती है कि फर्ज कर लीजिए किसी मौके पे मां और बाप दोनों हैं इज्जत जो देनी है बाप को बनिस्बत मां से ज्यादा देनी है और मां और बाप दोनों मोहताज हैं खिदमत के मां की खिदमत ज्यादा करनी है बनिस्बत बाप के शरीयत ने दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया उसकी वजह भी बड़ी अकली है अकली वजह यह है कि अगर बाप की इज्जत नहीं रहेगी खानदान की इज्जत नहीं रहेगी बाहर इज्जत नहीं रहेगी तो वालिद की इज्जत जब खुद नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा निजाम धर्म भरम हो जाएगा सिलसिला खत्म हो जाएगा फिर वालिद कैसे ही बूढ़ा क्यों ना हो कुछ भी हो ऊंट की हिम्मत करके अपना काम खुद कर सकता है खाना पका लेगा औलाद अगर नहीं कुछ दे रही तो पैसा जमा होगा वो खर्च कर लेगा कुछ कर लेगा मां अगर बूढ़ी हो जाएगी जब बूढ़ी हो जाएगी तो वैसे भी नहीं कमाती थी लेकिन बुढ़ापे में उसके लिए और मुश्किल पेश आ जाएगी तो खिदमत की वो ज्यादा मोहताज होगी बनिस्बत बाप के और बाप को चूंकि मुआशरे में कंट्रोल हासिल है बाहर आना जाना है उठना बैठना है ये सब चीजें हैं तो इसलिए शरीयत ने कहा कि बाप की इज्जत ज्यादा है और मां की खिदमत ज्यादा है दोनों चीजों में फर्क कर दिया ताकि मुआशरा बैलेंस रहे कायम रहे इत्तेदाल कायम रहे अब किसी इंसान की फर्ज कर लो तबीयत में ये बात मुवाफिक आ गई उसने कहा शरीयत ने ये उसूल दिया है और बड़ा अच्छा उसूल है वालिद ने कहा पानी पिला दो वालिदा ने भी कहा पानी पिला दो तो फुकहा कहते हैं कि मां को पहले पानी पिलाए और बाप को बाद में पानी पिलाए है तो जरा सा फर्क लेकिन वो कहते हैं शरीयत का मिजाज यही है की वजह यह है कि बाप को अगर दो चार मिनट लेट हो गया तो वो उठ के पी भी सकता है हिम्मत कर सकता है बड़ा जब्त होता है कहेगा चलो छोड़ो नहीं बेटे ने पिलाया तो क्या हुआ माँ वो औरत है वो महसूस भी ज्यादा करेगी उठ भी नहीं सकती और उसका जोफ है बुढ़ापा है तो उसके लिए खिदमत उसकी ज्यादा कर दी जाए और बाहर का मसला कोई आ गया जहाँ माँ की और बाप की इज्जत का सवाल है तो बाप की इज्जत को कायम रखना ज्यादा जरूरी है नस्बत माँ के क्योंकि वो अंदर के हालात हैं वो छुप सकते हैं जरूरी नहीं है कि हर आदमी कुरेदे और कुरेदे में बता भी दिया जाए लेकिन बाप के हालात सारे जहान में पता है लोगों को तो इसलिए कहा कि उसकी अजमत ज्यादा है और इसकी खिदमत ज्यादा है अब जिसको ये बात मुआफिक आ जाएगी वो इस नेकी को आसानी से कर लेगी उसके एक और मिसाल आप देखिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून हाजिर हुई और वो ऐसी खुशकिस्मत खातून थी मसनद अहमद की रिवायत में आता है कि उन्होंने कहा मैंने दोनों किबलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी यानी बैतुल मक़दस जब किबला था उस वक्त भी उन्होंने नमाज पढ़ी थी फिर हिजरत के बाद जब बैतुल्लाह किबला बना इसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आई बूढ़ी हो गई थी हाथ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जब पड़ी तो आपने फरमाया ये कैसा हाथ है मर्दों का है औरतों का उसे कहा अल्लाह के रसूल मैं तो औरत हूँ तो आपने फरमाया औरत होके अपने हाथ को रंगती नहीं मेहंदी नहीं लगाती हो ये कैसा हाथ है हदीस में आया है कि वो औरतों को ये हदीस सुनाती थी और कहती थी कि अपने हाथों को फारिग ना रखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुझसे और अब मुझे देखो बिन्त समानीन मैं 80 साल की बुढ़िया हो गई अब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाथ मेहंदी वाले होने चाहिए हाथों की रंगत तब्दील होनी चाहिए ये सब चीजें किस तरफ लेके जाती हैं इंसान में जिंदगी पैदा होती है उमंग पैदा होती है जीने का शौक पैदा होता है एक ये जो चीज है कि मरने का शौक और वो रिवायात हमारे मुआशरे में कसरत से हो गए मरो मारो लड़ो जिंदगी को खत्म करो मुसीबत आ गई तकलीफ आ गई परेशानी आ गई मर जाते ये हो जाता वो हो जाता और मजहबी तबका भी इस तरफ चल पड़ा है कि मारने के अलावा मरने के अलावा कोई बात ही नहीं और वो चीजें जो जिंदगी पे आमादा करती हैं बहुत थोड़ी हो गई और जिंदगी में आमादा करने वाली चीजें जब थोड़ी हो जाती हैं तो लोगों की कुव्वत और हिम्मत में फर्क पड़ जाता है जब हर जगह ये सुनते हैं कि मारो मरो तो नतीजा उसका ये निकलता है कि लोग उसकी तरफ ज्यादा मायल हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की का अमल रुक जाता है और उसकी बनिस्बत जो लोग ऐसी रिवायात सुनते हैं ऐसी बात सुनते हैं जिनमें उमंग है हौसला है जीने की हिम्मत है हालात को तब्दील करना है आगे बढ़ना है काम करना है नतीजा ये निकलता है कि वो आसाइश और आराम की तरफ चलते हैं और अपनी जिंदगी भी अच्छी करते हैं दूसरों की जिंदगी भी अच्छी करते हैं यही वो चीज थी जैसे साद रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाई थी और आपने फरमाया साद उनके जब ऐसी ऐसी हालत सारी हो गई कि गोया वो इंतकाल कर जाएंगे तो साद रज़ी अल्लाह अन्हु थे मालदार उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सारा माल खुदा की राह में मतलब क्या था कि जीना मीना तो अब है नहीं पता नहीं किस तरह मौत आ जाए और आदत ये थी कि खैमे से उनका खून बाहर बह रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए तो खून देख दिया वापसी पर रुके सुनाया क्या हो गया एहसास को पता चला कि जख्म एक था पुराना वो खुल गया है और उससे वैसे खून रिसने लगा इतना खून रिसा को बहना शुरू हो गया जिंदगी से गोया मायूसी हो गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया कि फरमा दिया कलमा पढ़ो अब तो आखिरी वक्त आ गया उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल अब कुछ है नहीं जिंदगी की उम्मीद और ये चीजें हैं और सब अल्लाह की राह में आपने कहा साद ऐसे नहीं करते उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आदि आपने कहा ऐसे भी नहीं करते और उनकी एक बेटी थी और उन्होंने फरमाया उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल 1/3 को कबूल करने यानी 100 में 33 रुपए तो आपने कहा सुलस वसुलस कसीर तीसरा हिस्सा खुदा की राह में 66 रुपए अपनी बेटी के लिए छोड़ रहे हो ये जो 1/3 दे रहे हो ये भी बहुत ज्यादा है और समझाया और फरमाया साथ अपनी औलाद को खाता पीता दुनिया से छोड़ के जाओ ये ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि तुम्हारे मरने के बाद वो लोगों में हाथ फैलाती फिरे तो जिंदगी की उम्मीद दिलाई और अपने साथ अभी तो अल्लाह ने तुमसे बड़ा काम लेना है एक पूरा मुल्क तुमने पता करना है और अल्लाह ताला तुम्हें बेटा भी देगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पूरी हुई साद रजी अल्लाह अन्हु क्या औलाद दी और जब ईरान उन्होंने पता किया तो ये हदीस सुनाते थे कि मेरा तो ये हाल था कि जिंदगी की उमंग है उम्मीद है जीना है सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे जब तुम किसी काम को शुरू करो तो ये समझ लिया करो कि अब मौत नहीं आनी ऐसे किया करो और जब तुमसे गुनाह हो जाए तो जल्दी अल्लाह से तौबा करो कि पता नहीं किस वक्त खुदा के सामने पेशी हो जाए ये है वो एतदाल का रास्ता इसकी 80 साल की उम्र हो गई फिर भी वो अपने हाथों की मेहंदी लगाती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने हाथों को तब्दील कर दो यहां हमारे यहां औरतें वो जरा 50 साल 55 साल से ऊपर हुई बाल जितने सफेद हो गए अब सफेद ही रहे अब इसको किससे रंगना है हाथों में मेहंदी नहीं लगी ना लगे इसलिए क्या और अगर शौहर का इंतकाल हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही जाती रही ऐसे जैसे वो 80 साल की हो गई है कितनी उम्र उसकी हो गई है इसलिए कि जीने की जो उमंग है जिंदगी गुजारने का जो ढंग है वो नहीं सिखाते लोग और उसे ऐसी रिवायात जरूर बताते हैं जिसमें मौत का जिक्र है ये चीजें अब वो 80 साल की हैं मेहंदी लगा रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साहबजादी साहब आई हैं हज करने के लिए सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने देखा यमन से तशरीफ लाए और आकर जो देखा तो उन्होंने मेहंदी लगा रखी थी अपने हाथों पे बड़े नाराज हुए कहने लगे कि तुम हज करने आई हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं और उनकी बेटियों की ये मेहंदी कैसी उन्होंने कहा मैंने उमरा किया और एहराम खोल दिया उसके बाद क्या तो गुस्से में सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु चले गए और जाके अर्ज किया कि बेटी आपकी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उमरे का एहराम बांधा था इसलिए उसने ये किया उमरे का एहराम खोल दिया मेहंदी लगाई है और तुमने क्या एहराम बांधा है अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु चुप हो गए कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं एहराम बांध रहा था वहां से और मुझे ख्याल आया कि मैं किस चीज का एहराम बांधू तो मैंने कहा अल्लाह मैं उसी चीज का एहराम बांधता हूँ जिसका एहराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांधा है तो आपने कहा फिर तो अली तुम मेरे ही साथ हो एहराम ना खोल ये वो चीज है जिंदगी है ये चीजें हैं जीने का हौसला है उमंग है ये चीजें जब मुआफिक आ जाती हैं तो फिर इंसान जीने की तमन्ना भी रखता है और फिर इंसान आगे भी बढ़ता है इसीलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत की बात फरमाई उनकी तो बड़ी बातें गहरी होती थी अगर वो खुदा के रसूल ना भी होते तो भी बड़े आदमी बड़े अजीम इंसान थे जो लोग उन्हें अल्लाह का रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है माज अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह उनके सामने भी जब ऐसी बातें रखी जाएं तो मुतासिर जरूर होते हैं कि उस जमाने में एक आदमी की सोच ये हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी की अयादत के लिए जाओ तो उस मरीज को जिंदगी की उम्मीद दिलाओ उसको कहो कि तुम सेहतयाब हो जाओगे उसको कहो अल्लाह ताला बेहतर करेगा जिंदगी बढ़ेगी फरमाया ऐसे जुमले कहो और फिर इरशाद फरमाया होगा वही जो अल्लाह ने करना है यानी अगर मौत के मुकद्दर में है तो तुम्हारे जुमले ये नफा नहीं दे सकते उसकी जिंदगी नहीं बढ़ सकती लेकिन उस इंसान का हौसला तो रहेगा ना चार दिन जो जीना है तो आराम से जिएगा जब जिंदगी की उम्मीद पैदा होगी और हौसला होगा जीने का घर बनाएगा कौमी एतबार से तरक्की होगी इदारे बनेंगे वो इसलिए जिएगा कि मैं अपने बात को छोड़ के जाऊं दुनिया को कुछ दे के जाऊं जब ये सोच हो जाती है तो फिर लोग मेहनत किया करते हैं फिर लोग काम किया करते हैं फिर कौमें तरक्की करती हैं आहिस्ता 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 लोगों का रुझान बदल जाता है वो कहते हैं क्यों ना इस बिजनेस को ज्यादा करें क्यों ना अगर आरण को कर दिया तो इस बिजनेस को और फैला लें यही वो चीज है जिसपे पहुंच के फिर उसके पास पैसा भी आता है माल भी आता है अल्लाह की राह में भी खर्च करता है और हर तरफ उस इंसान के लिए ये चीजें होती हैं आप अंदाजा करें जैसे उस्मान रजी अल्लाह का वो अमीरुल मोमिनीन थे और वो शख्स जो मदीना तैयबा में बैठा हुआ है इतनी उसकी दूर तक नजर है कि जब अफ्रीका फतह हुआ तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अनु ने अपने दो जर्नैलों को खत लिख के और दोनों का नाम एक ही था नाफे नाम था शायद दोनों का मोहम्मद नाम था बहरहाल जो भी था दोनों के नाम एक थे दोनों बड़े खत लिखा और फरमाया स्पेन पे कोशिश करो हमला करने की और वहां जाओ और स्पेन से तुम्हें तुर्की आने का रास्ता मिल जाएगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया था कि जो पहला लश्कर हमला करेगा कुस्तंतनी ये कैसे ने रूम के शहर पे तो अल्लाह ने उसे बख्श देना है तो तुम यकीन जानो कि तुम अगर रास्ता दरियाफ्त कर लोगे स्पेन से तुर्की आने का तो तुम उस पहले लश्कर में शामिल हो क्योंकि तुमने फौज के लिए रास्ता तलाश कर लिया फौज को तुमने एक राह दे दी कि इस तरह आप क्या कुस्तंतनिया पे हमला कर सकते हैं इस तरह आकर उन्हें पता किया जा सकता है अब कहां मदीना मुनव्वरा में बैठने वाले हजरत और कहां स्पेन और फ्रांस और कहां से तुर्की का रास्ता कौन सी चीज थी कि आगे बढ़ने की तमन्ना थी हौसला था हिम्मत थी ये सब अरबों का एक कबीला था इतने घोड़े उनके यहां पैदा होते थे इतने घोड़े उनके यहां पैदा होते थे कि उनके पास जमीन कम हो गई कि उस पर इतनी बड़ी चरागाह बनवाई और उन्होंने घोड़ों को ज़बह करना शुरू कर दिया سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کسی نے خبر دے دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور فرمایا جتنے بچوں کی پیدائش تمہارے ہاں ہوتی ہے اسے جاری رہنے دو اور وہ ہمارے پاس بھیج دو جن کی تم پرورش نہیں کر سکتے اور ہم اسے مدینہ منورہ میں ان جانوروں کو پالیں گے اور آخری جملہ بڑا زبردست لکھا لکھا کہ یقین مانو دنیا تمہارے پاس بھی قائم رہے گی مطلب یہ تھا کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تو دنیا نے تو چلنا ہے نا ये अच्छी चीजें दूसरों के लिए छोड़ के मरो ताकि आगे को लोग तरक्की करें ये सब चीजें ऐसी हैं तो इंसान की तबीयत के मुवाफिक जब हो जाती हैं तो इंसान उसमें फायदा पाता है इंसान तरक्की को करता है और दूसरी चीज जो इंसान के मुखालिफ आ जाती है और उसकी तबीयत कबूल नहीं करती शाहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसमें इंसान दुख को महसूस करता है अलम को महसूस करता है इसीलिए शरीयत कहती है کہ وہ چیزیں رکھے انسان جس سے اس کی طبیعت کو راحت پہنچے اور اللہ کی اطاعت بھی ہو اللہ کی اطاعت کے لیے چیزوں کا جمع کرنا اور خدا کی نافرمانی کے لیے چیزوں کو جمع کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے اس کے نتائج پہ بھی فرق پڑتا ہے دونوں چیزوں کو جمع کرتا ہے مطلب اس انسان پہ فرشتوں کا غلبہ ہے پاک طبیعت ہے صاف ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا چاہتا ہے خدا کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے اس انسان کے لیے پاکیزہ چیزیں جمع کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا یہ سب چیزیں ایسی ہیں یہ اس وقت اس کو خوشی دیں گی جب خوشی میں اللہ کی راہ پر چلے مسئلہ نکاسی بازار چاہتا ہے کرام خریدتا ہے کہ اللہ نے جب توفیق دی حج پہ جاؤں گا عمرے پہ جاؤں گا یہ چادریں کام آ جائیں گی اس انسان کو دیکھیے وہ چادریں پڑی ہیں لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے اللہ کے گھر جانے کی اس سے نیت کر لی اسی لیے جو جانور آتے تھے قربانی کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا بل الحدی اور خبردار کبھی ان جانوروں کی توہین نہ کرنا جو میری راہ میں پیش کیے جائیں گے بل القلائد اور نہ ہی ان پٹوں کی توہین کرنا جو ڈالے جاتے ہیں بل آمین المسجد الحرام اور جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ مسجد حرام میں آئیں گے حاجی اور عمرہ کرنے والے خبردار ان کی توہین نہ کرنا اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 اونٹوں کو تیار کیا جائے میں ان کی قربانی کروں آخری حج اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت تقریباً 63 برس کے قریب تھی کل اس کے بعد حیات ہی کتنی رہی ہے یعنی ذی الحج بھی یہ ہوا ہے 10 ذی الحج کو اور محرم سفر اور ربیع الاول 3 ماہ کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور 37 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ذبح کیے ہیں پھر حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اور آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کو سجایا جائے پھر تیسرا حکم آیا اور آپ نے فرمایا کہ اونٹوں پر چادریں ڈالی جائیں اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی کے جانور کو سجانا उसपे चादर डालना उसको चादर को बांधना ये सब चीजें ऐसी हैं जो मुस्तहब हैं और फिर वो कहा कहते हैं कि अल्लाह ने जिक्र किया है कि वल कलाइन और ना उन जानवरों की तौहीन करना जिनके गलों में पट्टा पड़ा हुआ हो तो कहते हैं चादर से भी अफजल ये है कि उसके गले में पट्टा डाल दिया जाए और दोनों चीजें जमा कर दी जाएं कि जानवर के गले में कोई खूबसूरत सी रस्सी बुनी हुई वो डाली जाए आप देखते हैं जब कुर्बानी के जानवर बिकते हैं तो बाज़ात लोग ले आते हैं अपने गांव से कहीं से औरतें बुनती हैं घरों में तो वो बहुत खूबसूरत किस्म के गाने तैयार कर देती हैं वो गानियां डालना इसको इस्तेलाह में गानी ही कहते हैं वो डालना चादर से भी अफजल और चादर भी डाल दे बेहतरीन कपड़ा अच्छे से अच्छा कपड़ा तलाश करके कि सर्दी है जानवर को सर्दी ना लग जाए उसके ऊपर डालना ये सारी चीजें शरीयत से साबित है यहां तक के आप देखेंगे सैयदना उमर रजी अल्लाह अनु के हां इतना एहतमाम होता था कि अपनी खिलाफत में हुक्म दे देते कि 100 जानवर यहां से तैयार किए जाएंगे और खिलाफत की तरफ से जाकर बैतुल्लाह में हरम में ज़बह किए जाएंगे और 100 जानवर जब तैयार हो जाते थे तो हुक्म फरमाते थे कि इनपे बेहतरीन चादरें डालो और इनकी बेहतरीन रस्सियां बनाओ और बहुत खूबसूरत फूलदार रस्सियां डाली जाती थी ऊंटों के गलों में फिर उसके बाद चादरें डाली जाती थी फिर वो लेके उन 100 कुर्बानियों को मदीना मुनव्वरा से बाहर तक आते थे और फिर फरमाते थे अब चादरें उतार दो क्योंकि सफर है सारा तो ये चीजें खराब हो जाएंगी और जिस दिन इन्हें जबा करना है फिर इन पे डाल देना और फरमाते थे इनको ले जाओ और मैं इसके बाद हज के लिए आ रहा हूँ वो रुखसत करते थे बाकायदा इन चीजों को इसलिए इसमें अल्लाह की ताजीम है अल्लाह के नाम की अजमत है और फिर इसके बाद क्या होता था वो पहुंचती थी कुर्बानियां और ये कदीम से चला था कि कुर्बानियों से वो चादरें उतारी जाती थी और उतारने के बाद इन्हीं चादरों से बैतुल्लाह का गुलाब बनाते थे और वो जो रस्सियां होती थी वो बेच दी जाती थी ये राय बहुत देर तक हत्ता के सैयदना उमर रजी अल्लाह ने हुक्म दिया कि बैतुल्लाह का जो गुलाब है आइंदा से उसके लिए अलग एक फैक्ट्री लगा दी जाए ताकि उसकी शान और अजमत में और इजाफा हो और हम उसके लिए वो तैयार करेंगे लेकिन वो राय हमेशा ये जाहिलियत में भी ये चीज थी जैसे साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह अन्हु हैं साद बिन उबादा बिन दुलैम इनके दादा का नाम दुलैम था और साद इब्ने उबादा रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा में बहुत सखी इतने सखी आदमी थे कि साल में एक दिन आता था दुलैम का यानी असल इनकी जद थी और उस दिन वो ऐलान करते थे कि आज मदीना मुनव्वरा में किसी को गोश्त चाहिए और किसी को घी तेल चाहिए चर्बी चाहिए हमारे घर से लोग जाते थे और एक एक साल की चर्बी ले आते थे साफ कर लेते थे साल साल घर का घी ले आते थे और वो इतना कुछ देते थे इतना कुछ देते थे साल में एक दिन का ऐलान होता था उनकी हवेली पे लोग मुंतजर रहते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की अर्ज किया अल्लाह के रसूल आप तशरीफ लाएं तो नाश्ता हमारे यहाँ करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है मैं नाश्ता करूंगा और उस दिन उन्होंने नली नेहारी पकाई और नली इतनी ज्यादा थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये क्या किया है उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इतने 100 ऊंट ज़बह किए हैं मेरा जी चाहता है आपको छका दूं एक मरतबा तो इतनी खिलाऊं कि आप बिल्कुल हाथ उठा लें इसके खाने से इतने ज्यादा वो खिलाने वाले थे हत्ता के उन्होंने कुर्बानियां जब ऊंटों की बहुत ज्यादा की तो वो वैदा बिन जरा और ये गए उमर रजी अल्लाह अन्हु समझाने के लिए कि क्या कर रहे हो इतना ज्यादा माल खुदा की राह में खर्च कर रहे हो कंगाल हो जाओगे तो वो उठे गुस्से में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल आप देखते हैं कि मुझे खर्च करने से मना करते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अल्लाह के रसूल हम दोनों इसलिए गए थे कि इतना खिलाना लोगों को और इतनी कुर्बानियां तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया हज पड़े और बस इतना कहा भाई तुझो दिन ये तो घराना ही ऐसा है कि जहाँ हमेशा सखावत होती है ये सखावत इस घर का इस खानदान का तुर्रा इम्तियाज है गोया कि ये फरमाया इनके बेटे से कहे वो भी ऐसे ही करते थे और कैस बिन साद बिन उबादा बिन दुलैम ये इनका पूरा नसब बनता है और ये दुलैम 10 ऊंटनियां जब मुशरिक थे ना ये लोग तो मनात देवी की परस्तिश करते थे हर साल 10 जानवर भेजे जाते थे फिर उबादा भी ऐसी करते रहे साद रजी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम कबूल किया है तो उसके बाद ये 10 जानवर हमेशा देखते थे मक्का ईद के दिनों में कुर्बान के लिए के लोगों को गरीबों को खिलाना फिर इनके बेटे कैस भी ऐसे ही करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सारी चीजों को देखते थे तो जब नेकी मुवाफिक आ जाए नेकी के आसार तबीयत में होते हैं ये वो चीजें हैं जो फुकाहा ने जो सूफिया ने लिखी हैं और वो इससे ये संवाद और नतीजा निकालते हैं और वो कहते हैं कि किसी आदमी से मायूस नहीं होना चाहिए कुफ्र में जो उसका तबीयत थी मिजाज था नेकी करने का इस्लाम आया है तो इस्लाम ने भी नेकी का मिजाज बरकरार रखा सिर्फ इतना हुआ कि वो बुतों की बजाय खुदा के नाम पर ज़बह करने लगे तो कहते हैं एक आदमी जो अभी शराब खाने से निकल के आ रहा है ऐन मुमकिन है कि फजर की नमाज में तौबा कर ले ऐन मुमकिन है कि फजर के वक्त मस्जिद आ जाए खुदा से माफी मांग ले अभी वो न्यू ईयर नाइट मना रहा था और मुमकिन है कल को खुदा की तौफीक हो और नमाज पढ़े और खुदा के सामने तौबा कर ले तो कहते हैं किसी सूरत इंसानों से मायूस नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे हो गया है तो वैसे ही होगा ऐसे हो गया तो ऐसे ही रहेगा अल्लाह जब चाहता है हालात को फेर देता है और इसके बिल्कुल अब देख ले बल्कि इससे ये देखिए फुकाह ने लिखा है कि मुस्तहब है कि आदमी उस जमाने में वुजू लोटों से करते थे ना लोग बाल्टी से करते थे ऐसी चीजों से फुकाह ने लिखा है कि जब इंसान वुजू कर ले तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि पानी भर के दोबारा रख दे कि अगले वक्त में इससे वुजू करूंगा वो कहते हैं पानी पड़ा रहेगा और इससे सवाब मिलता रहेगा क्योंकि इस इंसान ने इस नीयत से ये पानी रख लिया है अब भी होता है और बहुत जगहों पर होता है कि लोग एहतियातन दो चार बाल्टियां भर के रख लेते हैं कि सुबह अगर बिजली ना हुई पानी ना आया मशीन ना चली तो ये पानी काम आ जाएगा बस नीयत उसकी अगर ठीक हुई कि इस पानी से इबादत करेंगे वुजू कर लेंगे तो उस इंसान को उस पानी के रखने में भी सवाब है और बिल्कुल इसके बरक्स फुकहा कहते हैं और वो यही चीज है कि शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो चीज जो इंसान की तबीयत के मुवाफिक नहीं आती फिर उसे वो दुख पहुंचाती है तकलीफ पहुंचाती है जब इंसान की तबीयत से माज अल्लाह गलबा हो जाए बहीमियत का और गलबा हो जाए शैतनत का और गलबा हो जाए जानवर पने का तो अब जो जानवर पने की चीजें हैं ना जब वो नहीं मिलेंगी उस इंसान को तकलीफ पहुंचेगी बर्तन वो हाजी है पीने पिलाने का अब जब उसे शराब नहीं मिलेगी तो उसे अंदर की वो कुव्वत उभारेगी कि मेरी तस्कीन करो नतीजा ये निकलेगा तो गुनाह की तरफ चला जाएगा इसीलिए फुकहा ने शरीयत में यह मसला लिखा है कि जैसे नेकी की चीजों को कायम करना कि इससे नेकी वक्त आएगा तो नेकी करेंगे इसी तरह गुनाह की चीजों को कायम रखना कि जब मौका मिला तो इससे गुनाह करेंगे ये हराम है और उसमें सवाब है एक आदमी जुआ नहीं खेलता माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लेकिन जुए में जो भी चीजें लगती हैं उससे अपने पास रखी हुई हैं कि किस दिन पैसे आए तो जुए के लिए ये चीजें मार्केट से नहीं खरीदनी पड़ जाती अपने घर में पड़ी हुई है जुआ इससे खेलूंगा वो खेले ना खेले इन चीजों के रखने की वजह से गुनाहगार हो जाएगा इसलिए कि उसका इरादा तो यही है ना कि ये गलत काम करना है तो वो मेंटेलिटी वो ज़हनियत वो परवरिश पाती रहेगी जब उन चीजों को ये हटा देगा निकाल देगा अपनी जिंदगी से तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सब्र और सुकून आ जाएगा ये चीजें अब रही नहीं अब अल्लाह से तौबा कर ली माफी मांग ली इसलिए शरीयत कहती है कि जो हराम काम है उस हराम काम के असबाब को कायम रखना भी हराम और जो नेकी का काम है उस नेकी के काम के असबाब को कायम रखना भी नेकी अब नेकी के असबाब को कायम रखेगा दिल को इत्मीनान पहुंचेगा मुसल्ला रख लेते बहुत सी औरतों में आदत होती है कुरान करीम का कोई खूबसूरत नुस्खा देखा वो खरीद लिया 15 साल 10 साल बाद बेटी की शादी हुई उसे तोहफे में दे दिया ये मैंने खरीदा था अब उससे कब से खरीदा हुआ था उससे सवाब मिल रहा है इसलिए कि नेकी शादी की और नेकी का सबब उसने कायम कर दिया इसके बरक्स जब कोई गुनाह आता है और गुनाह का सबब कायम कर लेता है तो न करने के बावजूद वो गुनाहगार होता है इसलिए कि उसकी तबीयत जो है उसके अपनी तबीयत को बिगाड़ने का एक सबब कायम कर रखा है इसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह जो फरमाते हैं वो कहते हैं कि देखो हर एक के लिए चीजों से कुल्फत भी होती है और चीजों में मजा भी आता है तो जो अंदर की ताकत होती है फरिश्तापन नेकी अच्छाई पाकीज़गी
جب عمل اس کے مناسب حال ہوتا ہے تو اسے لطف آتا ہے اور اگر اندر کی طبیعت میں جانور بنا ہے تو اسے گناہ میں پھر مزہ آتا ہے اب شاہ صاحب رحمت اللہ نے آخری بات اس میں کی انہوں نے کہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم یہ کہو گے کہ وما اشبہ حال الانسان انسان کا حال بھی کہتا ہے کہ انسان میں دونوں قوتیں بے وقت جمع ہو گئے نیکی کی قوت بھی آ گئی اور برائی کی قوت بھی تو کہتے ہیں ایک ہی چیز میں دو ایک ہی انسان میں دو چیزیں کیسے جمع ہو گئی بہت مسائل ہیں اس عبارت سے انسان ایک ہی وقت میں نیکی کا کام بھی گناہ کا کام بھی اچھائی بھی برائی بھی دونوں ایک جگہ ایک چیزیں کیسے جمع ہو گئی شاہ صاحب رحمت اللہ کی مثال آگے دیتے ہیں کہ ایک ہی چیز میں مختلف قوتیں کیسے قائم ہو جاتی ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان قادر ہے مقید اور اللہ قادر ہے مطلق اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق بڑی اہم بات ہے اسے ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ قادر ہے مطلق اور انسان قادر ہے مقید اللہ قادر مطلق ہے مطلق کا مطلب ایبسلوٹلی جو چاہے تو کرے اور انسان مقید ہے قدرت ہے انسان میں بھی قید ہے انسان بھی سمیع اور بصیر ہے اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے اللہ کی سماعت اور اللہ کی بصارت وہ جہان ہی الگ ہے وہ چیز ہی الگ ہے انسان جو سنتا اور دیکھتا ہے وہ مقید ہے قید ہے دیوار آ گئی دیکھنا رک گیا نابینا ہو گیا دیکھنا رک گیا آنکھوں میں کوئی چیز پڑ گئی دیکھنا رک گیا قدرت جو مقید ہے انسان کی اصول کی بات یہ ہے کہ انسان اس طرح مقید قادر ہے کہ انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے جذبہ چاہیے جذبہ اس کا حرکت دیتا ہے تو انسان اپنی قدرت سے کام لیتا ہے انسان کی قدرت عمل میں آتی ہے جب اس کو جذبہ حرکت دیتا ہے انسان کی قدرت کھانے کی ہے نہیں کھائے گا بھوک کا جذبہ پیدا ہوگا تب وہ حرکت دے گا اس کی قوت کو کہ کھاؤ تو یہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کھانے لگے گا پیاس جذبہ ہے اور وہ جذبہ انسان کو لائے گا اس بات پر کہ پیو تو اٹھے گا اور پانی پیے گا ہاتھ بڑھائے گا اور پانی پیے گا انسان کی قدرت مقید ہے جذبے کے ساتھ خارجی تحرک کے ساتھ کہ خارج میں کوئی قوت ہونی چاہیے جو اسے متحرک کرے آمادہ کرے اور پھر وہ عمل کرے یہ ہے ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک انسان قادر ہے لیکن وہ تحت ہے اس جذبے کے جو جذبہ خارج سے انسان کو مجبور کرے اور انسان کام کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا آدمی کیوں اس کو اسپتال اٹھا کر لے جا رہا ہے اس لیے کہ باہر کے منظر نے اسے مجبور کیا ہے کہ دیکھو خون بہ رہا ہے دیکھو ایک انسان مر رہا ہے اب رحم کا جذبہ ابھرا نا تو آدمی نے کیا کیا اس کو اٹھایا اور اسپتال لے گیا اس کا مطلب ہے آدمی رحیم ہے رحم کرنے والا ہے مگر اس کے لیے جذبہ چاہیے کوئی باہر سے اگر باہر سے جذبہ نہیں ہوگا تو رحیم نہیں ہوگا ایک بچہ رویا اور کہتا ہے مجھے پڑھنا ہے اور میرے پاس کتاب نہیں صاحب آپ ایک کتاب لے لیں اب انسان نے کیا کیا اپنے پاس سے پیسے نکالے اور کہا بیٹے یہ کتاب لے لو اب یہ انسان جو ہے یہ جو جذبہ ہے اس کا اندر سے جو ابھر رہا ہے نا یہ جذبہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ خرچ کرے تو انسان قادر ہے مگر مقید ہے قید ہے کہ بیرونی جذبہ اسے متاثر کرے تب پھر وہ خرچ کرنے والا بھی بنے اور سب وہ بھی بنے کہ وہ رحم کرے اور اللہ قادر مطلق ہے قادر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے جو اسے مجبور کرے کہ تم رحم کرو خود ہی رحیم اس کے لیے باہر کی کسی محرک کی ضرورت نہیں وہ خود ہی خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ افریقہ میں قحط پڑ گیا لہذا میں ادھر پیسے دے دوں ان کو خرچ کر دوں اس کے لیے باہر کا کوئی جذبہ نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ نہ خرچ کرے تو بھی رہی ہے وہ پوری کائنات کو مار دے تو بھی رہی ہے ये है वो नुक्ता जिसे बहुत से लोग समझते नहीं है तो वो कहते हैं खुदा कहां है कराची में क्या हो रहा है खुदा कहां है इस दुनिया में क्या हो रहा है अरे भैया अल्लाह ताला की रहमान है रहीम है आप और हम नहीं है हमें बाहर का जज्बा मजबूर करता है कि हम कराची की तरफ देखें हमें बाहर का जज्बा मजबूर करता है कि दुनिया में दुखों और तकलीफ और गरीबों पे गौर करें खुदा तो कोई ऐसी चीज बाहर से मजबूर नहीं करती कि खुदा मजबूर हो जाए उस काम को देखे और फिर उसके बाद वो रहमत करे उसके बाद मेहरबानी करे ये फर्क है कादरे मुतलक में और कादरे मुकय्यद में और ये वो चीज है जिससे सोशलिस्ट फायदा उठाते हैं कम्युनिस्ट फायदा उठाते हैं वो कहते हैं देखो ना क्या हो रहा है कहां है तुम्हारा खुदा किधर गया अगर खुदा है तो ये सब कुछ क्या हो रहा है अरे भैया जो भी मर्जी हो कोई इसे मजबूर थोड़ी कर सकता है कि जरूरी कराची के हालात ठीक हो जाए वो न करे तो भी रही है सब मर जाए तो भी रही है और यही वो चीज है कि वो जहन्नम में फेंक दे तो भी मेहरबान है इसलिए कि उसे इंसानों का दुख तकलीफ जो जहन्नम में जल रहे हैं उनका जलना उसे मुतासर थोड़ी कर देगा कि अब रहम करे कादरे मुतलिक है जो चाहे तो करे इस नुक्ते को ना समझने की वजह से इंसान कुदरत से जब बात करता है तो अपनी कुदरत को हकाला शानू की कुदरत पर कयास करता है और बुनियादी गुमराही है अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है हम मुकय्यद हैं और मुतलक है अलल इतलाक है जो चाहे तो करे उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता इसीलिए हदीस में आता है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ला मुकरह लहु और लोगों याद रखो अल्लाह को कोई चीज मजबूर नहीं करती वो असल में यही नुक्ता है उस हदीस में भी कि अल्लाह ताला जो चाहे तो करे तुम्हें हमें जज्बात मुकय्यद मजबूर करते हैं फिर जाकर हम आगे चलते इसीलिए बताया गया कि जो चीजें अकलन मुहाल हैं अल्लाह की सिफत कुदरत का उनसे ताल्लुक नहीं है ये बहस इंशाल्लाह के और दिन करेंगे लेकिन है ये बहुत दकीक बहस कि अल्लाह की जितनी चीजें हैं कुछ मुमकिन है कुछ वाजिब है कुछ मुमतने हैं कुछ मुहालात में से सारी फलासफा की बहस है जो कि अकलन मुहाल है अल्लाह की सिफत कुदरत का उससे ताल्लुक नहीं है मसलन हराम मित्र बने हुए अब कोई कहे कि क्या अल्लाह के लिए ये मुमकिन है कि हराम मित्र हो ही ना कायनात में तो फलासफा कहते हैं कि अल्लाह के लिए ये मुमकिन है कि सारे इंसानों के जहन से हराम मित्र का तखयल उड़ा दे सुबह उठे तो किसी को याद ही ना रहे कि हराम मित्र थे या नहीं थे और हराम को भी खत्म कर दे तो कायनात में हराम हुए ही नहीं ये तो चलो सारे इंसानों के साथ खुदा ने कर दिया मगर असल में तो कभी आराम थे ना इंसानों के साथ अगर खुदा ये ना करता तो फिर क्या होता यही वो बहस है जो मुतज़िला करते हैं मुतज़िला कहते हैं कि कुरान जैसी दूसरी किताब का लाना अकलन नामुमकिन नहीं ये तो अल्लाह ने मना कर दिया है कि जैसी किताब नहीं हो सकती अगर खुदा खुद अपनी कुदरत से काम ना लेता तो हम कुरान जैसी की किताबें लिख देते माज अल्लाह वो कहते हैं ये अकल जो है अकलन ममनू है खुदा की किताब अल्लाह की कुदरत के तहत ममनू है वरना अल्लाह अगर अकल इस पे पाबंदी ना लगाता हर एक को मजबूर ना कर देता तो इस सबके लिए मुमकिन था सारी कौमों के लिए कुरान जैसी किताब लिखते अहले सुन्नत वल जमात ने उसके मुकाबले में कहा ये वो बात है जो वकात में हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह की है उन्होंने कहा मुआलात के साथ अल्लाह की सिफत कुदरत का ताल्लुक नहीं बनता यानी जो चीजें मुहाल हैं अल्लाह की सिफत कुदरत का उसके साथ ताल्लुक ही नहीं है अकलन मुहाल है मसलन एक जगह 10 गाड़ियां खड़ी करने की जगह है कोई आदमी उससे कहे कि 10 की जगह में तुम 100 गाड़ियों को खड़ा कर दो कर सकते हो ये सवाल ही गलत है इसलिए कि अकलन मुहाल है कोई आदमी चीज कहता है कि 2 को 2 में जमा करो तो ये 5 होने चाहिए 5 कर सकते हो भी 5 कौन कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता ये सवाल अकलन ही मना है अकल ही नहीं तस्लीम करती सवाल ही गलत है ये नहीं हुआ करता कि गलत सवालों के जवाब भी कोई आदमी दे दिया करे तो इसलिए ये जो कुदरत है ना खुदा तआला की इससे तो कभी बात होगी फिर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सवाल ये पैदा होता है कि दोनों कुव्वतें इंसान में बयक वक्त कैसे जमा हो गई फिर वो कहते हैं कि सबसे अच्छी मिसाल इसकी बेहतरीन मिसाल तुम्हें दूं बेहाल वर्दे ऐसे समझ लो کہ جیسے گلاب کا پھول ہے علامہ ذکر ابن اتباع جیسے کہ اس کے بارے میں حکمہ نے لکھا ہے کہ ان نفیر سلاس اقوان اس میں گلاب کے پھول میں تین طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ گلاب کا پھول اگر خشک کر لیا جائے تو اس میں زمین کی صفت پیدا ہو جاتی ہے یعنی مٹی کی طرح ہو جائے اور اس کے بعد اسے کسی زخم پہ لگایا جائے تو وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے تین قوتیں ہوں گی ایک قوت اصلی ہوئی رگڑنے اور لیپ کرنے سے ظاہر ہو جاتی ہے دوسری قوت کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ قوت مائیہ پانی کی طاقت اس گلاب کے پھول میں ہے اور وہ تمہیں اس وقت پتا چلے گا عند العصر والشرب جب کوئی عرصے گلاب پیئے یا اس کے بعد اس گلاب کے پھولوں سے عرق نکالے تو پانی بھی اسی میں مل گیا مٹی کی قوت بھی اسی میں مل گئی وقوت الحوائیہ اور تیسری قوت آپ اس پھول میں محسوس کرتے ہیں اور وہ اس وقت ہے عند الشم جب آدمی سونگتا ہے تو ہوا کی قوت بھی اس میں آ گئی تو کہتے ہیں ہوا کی قوت بھی گلاب میں پائی جاتی ہے آپ نے سونگا تو ہوا کے ذریعے اس چیز کو آپ نے محسوس کیا کہ اس کی اچھی خوشبو ہے زمین کی قوت بھی پائی جاتی ہے آپ نے اسے رگڑا صاف کیا اور اس کو کسی زخم پہ لگا دیا تو زخم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو گیا یہ زمین کی قوت ہو گئی اور تیسری قوت اس میں پانی کی بھی پائی جاتی ہے کہ پانی کی طرح اس کا بھی ایک عرق ہوتا ہے تو کہتے ہیں جس طرح یہ تین قوتیں گلاب کے پھول میں جمع ہو گئیں ایسے ہی اللہ نے انسان میں دو قوتوں کو رکھتا ہے ایک بہیمیت ہے جانور بنا اور ایک ملکوتیت ہے فرشتوں کی بات تو انسان کی طبیعت کبھی ادھر مائل ہوتی ہے کبھی ادھر مائل ہوتی ہے اور یہ چیزیں اسی طرح سے چلتی سبحان